हरे कृष्णा प्रियपन शील भक्तवन दामोदर देश सनातन देश फेसबुक के भाले भाग्यशाली भक्तों, हम गोपियों का प्रथम पूर्व राग का गीत कृष्ण से मिलने से पहले का वेणु गीत के रूप में जो श्रीमद् भागवत के 21वें अध्याय में 10वें स्कंद में वर्णित है, जो अति मधुर है, उस स्तर पे उसको समझने के लिए जो हृदय में भाव चाहिए वो सामान्य रूप से तो सबके पास नहीं होते। तो ये जो श्लोक आज हम पढ़ने जा रहे हैं, ये श्लोक एक सबके लिए सहारा है। ये राधा रानी के मुख से श्लोक निकला है और कृष्ण के मिलने के लिए एकमात्र सहारा है श्री कृष्ण के अनुरागी भक्तों की कृपा। सो अब अनुरागी भक्तों में सर्वश्रेष्ठ भक्त कौन है जिसका शरण लिया जाए, और जो भक्त सब समय सब जगह सब समय और सबको सुलभ मिल सकता हो, और जिसको सर्वश्रेष्ठ भक्त शास्त्र ने प्रमाण के रूप से माना हो। तो आइए इस श्लोक का रसास्वादन करते हैं। श्लोक 18। हंताय मद्री अबला हरिदास वरयो यद राम कृष्ण चरण स्पृश प्रमोद मानं तनोति सगो गणयो तयोरय पाणीय सुयवास कंद्र कंद मूलै। हंत एक भाव है कहने का, ओ ऐसा यही तो एक सबसे उत्तम साधन है। क्या अयम, ये जो सामने दिख रहा है उस दिशा में उंगली उठा के कह रही है राजा रानी। अद्री, अद्री कहते हैं छोटे पर्वत को। अबला, अपने आप को कहती हैं, हम तो स्त्रियां हैं अबला हैं, पर गिरिराज सबल है, उसका शरण ले लेंगे तो हम अबला नहीं रहेंगे, फिर हम बलशाली हो जाएंगी। क्या है विशेषता इस अद्री की जो अबलाओं का सहारा बनेगा? हरिदास वरयः, हरि के जितने भी दास हैं उनमें सर्वश्रेष्ठ है। तो क्या सेवा करता है ये दास? क्योंकि राम कृष्ण चरण स्पर्श प्रमोद, बलराम और कृष्ण के साथ अथवा रमणीय कृष्ण के साथ, जिनके साथ हम रमण करती हैं, गोपी कह रही है रमणीय कृष्ण भी राम का अर्थ है और बलराम कृष्ण भी राम का अर्थ है। उनके चरण जब गिरिराज पे स्पर्श करते हैं तो बड़ा आनंद में प्रमोद में प्रफुल्लित हो जाता है। मानम तनोति, और बहुत सम्मान करता है भगवान के चरणों का। केवल भगवान का करता है, नहीं, भगवान का करेगा तो हरिदास वर्य नहीं होगा, केवल हरि का छोटा दास होगा। हरिदास वर्य कौन है? जो भगवान के साथ गो गणय हो, गाय बछड़े और ग्वाल बाल, भगवान और भगवान के भक्त, उन सबको मान देता है। कैसे देता है? तयो हो, तयो हो जो ये दो वचन में है, ये कृष्ण बलराम के लिए भी है, और अगर बलराम को राधा रानी बलराम का नाम न ले तो ये भगवान के दो चरणों के लिए है, भगवान के दोनों चरण कमल तयो। क्या देते हैं भगवान के चरण कमलों को? क्या आदर से उपहार देते हैं? पाणी, हाँ, बहुत मधुर ठंडा जल झरनों का, पेय पदार्थ मधु के रूप में, आम का जूस, पीलू का जूस आदि बहुत से पेय पदार्थ भगवान और भगवान के भक्त और गाय और गाय बछड़ों को देते हैं। और सुयवस्सः, ऐसा नरम और बहुत मुलायम और शक्तिशाली वृद्धि करने वाला, गोवर्धन शब्द का अर्थ है गायों की वृद्धि करने वाला, गायों के लिए ऐसा घास जो पौष्टिक है और वृद्धि करने वाला है। और क्या देते हैं, कंद्र, ऐसी सुंदर गुफाएं हैं, सर्दी में गर्म रहती हैं, गर्मी में सर्द रहती हैं, वर्षा में भगवान को अंदर बैठ के और राधा और कृष्ण के विहार के 6 कम से कम गोवर्धन में रास मंडल है। और ये रास विशेष रूप से जो है बसंत ऋतु में यहां होती है। और क्या देते हैं, कंदमूल ही, कंदमूल का मतलब है जो जंगल में जड़ खाने के रूप में जो होती है, जैसे गाजर है, मूली है आदि, ऐसे और जो सुंदर स्वादिष्ट पदार्थ हैं वो सब गोवर्धन भगवान और भगवान के भक्तों को अर्पण करता है, अपना सर्वस्व अर्पण करता है। सो भगवान के सारे भक्तों में गोवर्धन गिरिराज सर्वश्रेष्ठ है। हे मेरी सखियो, राधा रानी कहती है, ये कृष्ण और बलराम को उनके गायों के साथ और बछड़ों के साथ और ग्वाल वालों के साथ हर प्रकार की आवश्यकताएं, चाहे जल हो या पेय पदार्थ हो या घास हो या कंदरा हो या कंदमूल हो या पुष्प हो, ये सब उपलब्ध कराती। और इस प्रकार से ये गोवर्धन भगवान को बड़ा आदर देती है, देता है। और भगवान के चरण कमलों के स्पर्श से ये प्रमोदित हो जाता है। चक्रवर्ती ठाकुर ने जो लिखा है उनका इन्होंने यहाँ भाव दिया है, प्रभुपाद के शिष्य ने, हम सीधा चक्रवर्ती पाद को ही पढ़ते हैं। वेणु गीत के ऊपर हमारे शिवराम स्वामी ने पूरा पुस्तक लिखा है वेणु गीत, उसमें विशेष रूप से इस श्लोक को राधा रानी के मुख से कहा गया है। और फिर सखियां हरिदास वर्य के लिए शास्त्रों का प्रमाण देना चाह रही हैं, तो यहां ये वर्णन चल रहा है। राधा रानी कहती है, सखियों सुनो, बिना भगत के शरण लेने, बिना किसी भगवान के अनुरागी प्रेमी के शरण लेने, हमारी इच्छा कृष्ण को प्राप्ति की पूरी नहीं हो सकती। हमने गार्गी से सुना है कि गोवर्धन हरि के दासों में सर्वश्रेष्ठ है, तो चलिए मानसी गंगा में स्नान करेंगी और फिर हरदेव जी का दर्शन करेंगी, इनकी कृपा प्राप्त हो जाएगी। ये गोवर्धन का आराध्य देव हरदेव जी है, ये 4 वो देव हैं जो वज्रनाभ ने स्थापित किए थे, गोविंद देव, हरदेव, केशव देव, और चौथा कौन सा है, गोविंद देव, हरदेव, हरिदेव, केशव देव, और भी एक चौथा नाम आएगा। तो केशव देव तो मथुरा में है, हरिदेव गोवर्धन में है, और वृंदावन में है गोविंद देव जी, श्री रूप गोस्वामी के पूजित ठाकुर। और मानसी गंगा में स्नान करने के लिए किसी अनुमति लेने की जरूरत नहीं है, ना हमारे पतियों से और ना ही हमारे बड़ों बुजुर्गों से, क्योंकि ये तो सर्वत्र सब लाग जाके स्नान करते हैं, दर्शन मंदिर का करते हैं। चलो चले, कहीं अगर निकट में कृष्ण भी हुआ तो हमें कोई आपत्ति नहीं है, चलो उधर चलती है। हो सकता है कृष्ण गोवर्धन की तलहटी में कहीं गैया चराते हो अपने ग्वाल बालों के संग, तो कृष्ण के मिलने की कामना से मानसी गंगा में स्नान करने का भाव करके और हरिदेव का दर्शन करने के लिए राधा रानी ने सब गोपियों को प्रेरणा दी। तो गोवर्धन की महिमा गा रही हैं अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए। हंत का मतलब है बहुत बड़ा आश्चर्य है। तीन बड़े भक्त भागवत में वर्णित हैं। ये तुंग विद्या जो अष्ट गोपियों में एक है, जो वेदों के सार को जानती है, वो मुस्कुराती हुई कहती है कि भागवत में एक तो लिखा है युधिष्ठर को हरिदास, भागवत में लिखा हरिदास राज ऋषे राज सोयम महोदय, राज ऋषि युधिष्ठर का महायज्ञ था क्योंकि वो हरि का दास था। और दूसरा उद्धव के लिए भागवत में लिखा है, और वो लिखा है सम स्मरयम रे मे हरिदास व्रजो कसम, उद्धव के लिए लिखा है। सर्वत्र भगवान का स्मरण करने वाले व्रज वासियों को सदा भगवान में तन्मय देखने वाला हरिदास वर्य है, दूसरा हरिदास ये है। और इन तीनों में गोवर्धन सर्वश्रेष्ठ है। भगवान के चरण कमलों का स्पर्श से जो इसको आनंद मिलता है, भगवान के चरण कमल बहुत कोमल हैं, और गिरिराज तो पत्थर का बना हुआ है, फिर भी भगवान के चरण कमल पड़ते ही वो बिल्कुल पिघल जाता है, और भगवान के चरणों के चिन्ह प्रकट हो जाते हैं, और इसके ऊपर भी स्पष्ट रूप से अंकुश भी दिखता है, वज्र भी दिखता है, ध्वजा भी दिखती है, कमल भी दिखता है, छाता दिखता है, दूसरा चरण होगा तो शंख आदि दिखते हैं, और दूसरा वो आनंद में जब विभोर हो जाता है तो जैसे अश्रु धाराएं बहें ऐसे उनके झरनों से पानी बहने लगता है। और उसके रोमांच उस सुंदर हरे घास के रूप में होता है जिससे वो भगवान के प्रिय भक्तों को गाय और बछड़ों का पोषण करते हैं, और दुर्वग्रास जिसके द्वारा पूजा में जो है पाद्य आदि दिया जाता है उसका काम करते हैं। ये गोवर्धन का आह्लाद है, आनंद है, श्री कृष्ण के सेवा के लिए अपने सर्वस्व को अर्पण कर देते हैं, अपने शरीर को ही अर्पण कर देते हैं। जो ये राम कृष्ण शब्द है, ये बलराम कृष्ण भी कहा जा सकता है, चक्रवर्ती बाद लिखते हैं, वो गोपियों ने कृष्ण के भाव को कि ऐसे कोई ना कहे कि हम केवल कृष्ण को अपने प्रेम के लिए कह रहे हैं, तो उन्होंने लज्जा को ढकने के लिए कृष्ण के साथ नाम बलराम जी का लिया है। परंतु वास्तव में रमणीय कृष्ण इसका अर्थ है। राम कृष्ण मतलब रमणीय कृष्ण, इसका अर्थ है जिसके संग हम माधुर्य प्रेम का रसास्वादन करती हैं, वो कृष्ण जिनके साथ भविष्य में इसी गोवर्धन में हम रासलीला बसंत ऋतु में करेंगे, वो कृष्ण रमणीय कृष्ण। और अबला का अर्थ एक तो कमजोर स्त्री है जिसमें बल नहीं है, क्यों नहीं है बोला, अपने पतियों के बस में है, स्वतंत्र तो है नहीं, तो आओ गोवर्धन का शरण ले लेते हैं, वो बड़ा शक्तिशाली है, तो हम अबला नहीं रहेंगी, फिर बलशाली हो जाएंगी। तो ये कारण है हमारे अबला से सबल बनने का कि गोवर्धन का शरण ले लो, क्योंकि गोवर्धन श्री कृष्ण की ग्वाल सखाओं के साथ, बलराम के साथ, गायों के साथ भक्ति पूर्वक पूजन करता है, भगवान के लिए चरण धोने के लिए पानी देता है, आचमन्य के लिए पानी देता है, पीने के लिए ठंडा झरनों का पानी देता है, पानिया नैवेद्य भगवान को भोग लगाने के लिए सुंदर सुंदर पेय पदार्थ मधु देता है, आम का रस और पीलू का रस देता है, और अर्घ्य के लिए द्रव्य ग्रास घास देता है सुवास्य। और ये ऐसा घास हरा भरा और शक्तिशाली है, गाय जब खाती है तो अति दूध ज्यादा देती है। पानी स्व का एक दूसरा अर्थ है पानी के झरने। और गोवर्धन भगवान के लिए सुंदर आसन, सुंदर पलंग बना देता है, कुर्सियां सज जाती हैं अंदर गुफाओं में, जो सर्दियों में गर्म और गर्मियों में सर्द और वर्षा में, और विशेष रूप से ग्वालों के संग दिन में और अन्य समय में गोपियों के संग विहार करने के लिए ये सब सुंदर गुफाएं हैं। और इनके साथ ऐसा भी समझना चाहिए कि सुंदर रतन मंडित पालकियां हैं, दीप हैं, और आईने हैं, दर्पण हैं, जो सब सेवा के लिए चाहिए। ये गोवर्धन कृष्ण की पूजा के लिए अर्पण करता है। इन दो श्लोकों में जीव गोस्वामी पाद कहते हैं, ब्रज के हिरणियों का वर्णन किया, भीलनियों का वर्णन किया, गायों का वर्णन किया, उसके पीछे गोपियों का एक ही भाव था कि वो अपने जो जो माधुर्य रस को है, वो है उसको छुपा रही थी। अब गोवर्धन की ओर उंगली उठा के, क्योंकि वो गोवर्धन के निकट ही है कहीं, अथवा उस दिशा में गोवर्धन सामने नहीं है, फिर भी गोवर्धन की ओर उंगली उठा रही है, और हरि कृष्ण का संबोधन है जो सबके पापों को हर लेते हैं और मन के संताप हर लेते हैं और सबका हृदय भी हर लेते हैं। और यहां गोवर्धन स्वयं ही ब्रज में आराध्य देव है। वैसे गोपियों के लिए गोवर्धन भगवान का परम दास है, और हम भक्तों के लिए गोवर्धन साक्षात भगवान का ही स्वरूप है। तो ये गोवर्धन भगवान का हरिदास वर्य है, स्वाभाविक सेवक है। शास्त्र में इसको ब्रज का अंक बताया है, नमो वृंदावन अंकाय तुभ्यं गोलोक मौलिने पूर्ण आत पत्र नमः गोवर्धनाय च। आतपत्र का मतलब जो छाता बन जाए पूरे ब्रज की रक्षा के लिए। तो ये गोवर्धन विशेष रूप से, और इसी गोवर्धन में मानसी गंगा के तट पे हरिदेव जी विराजते हैं। फिर भगवान के चरण के स्पर्श से इसको जो प्रमोद होता है उसको वर्णन है। और फिर भगवान को क्या अर्पण करता है उसका वर्णन है जो हम कराए हैं। राम के और भी अर्थ है। राम का एक अर्थ है बिलू, सुंदर, सफेद। तो एक अर्थ है सुंदर, तो गोवर्धन सुंदर हो जाता है श्री कृष्ण के चरण के स्पर्श से, ये राम का एक अर्थ। तो फिर तयो शब्द जो इसमें दो वचन में हो, भगवान के दोनों चरणों के लिए है। भगवान के चरण पड़ेंगे सर्दी में तो वो हल्का हल्का गर्म हो जाएगा, और गर्मी में पड़ेंगे तो हल्का हल्का ठंडा हो जाएगा। ये गोवर्धन भगवान के चरणों के साथ प्रेम का व्यवहार करते हैं हर ऋतु के अनुसार, और सब प्रकार के क्रीड़ा के लिए। राम का अर्थ है क्रीड़ा, कृष्ण की लीला के लिए राम का अर्थ है रमण करना, रमण का मतलब खेलना। तो भगवान श्री कृष्ण के ग्वाल बालों के संग गायों को चराते हुए जंगल में खेलने के लिए जो आवश्यकताएं हैं वो सब गोवर्धन उपलब्ध कराता है। स्पर्शन का एक अर्थ है देना। तो गोवर्धन सदा ही श्री कृष्ण की लीलाओं का सहायक है। और हमारे लिए भी गोवर्धन बड़ा दयालु है, नहीं तो भी कुछ दिनों के ऊपर विशेष रूप से गुरु पूर्णिमा जो सनातन गोस्वामी का तिरोभाव तिथि है, लाखों की संख्या में, कम से कम 5 लाख से अधिक लोग परिक्रमा के मार्ग में परिक्रमा करते हुए दिखते हैं। ये तो साक्षात कलिकाल का हरिदेव है। कोई गोवर्धन का स्पर्श कर ले तो भगवान के चरणों के स्पर्श का सौभाग्य प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि उस गोवर्धन के हर एक शिला के ऊपर कृष्ण के चरणों के स्पर्श का पहले से ही कृपा विराजमान है। प्रेम पूर्वक भगवान की लीलाओं की, अनंत लीलाओं का ये स्थान है। एक श्लोक आगे का पढ़ते हैं, आज ये पूरा कर लेते हैं। आज एक क्लास मेरी और भी है थोड़ी, 8:30। गा गोपिकाय अनुवनम नयतो उदारा वेणु स्वनहि कलपदैस्तनो वृतसो सख्यो अस्पंदनम गतिमतां पुलकस्तरुणां निरयोग पाशकृत लक्षणयो विचित्रम। अब गोपियों का भाव ये है कि जल्दी चलो, कहीं ऐसे न हो कि आगे गाय को लेके दूर न चला जाए गोवर्धन से श्री कृष्ण। गायों को गोपी कही, जो ग्वाल बाल हैं, जो भगवान के चारों ओर से रक्षक के रूप में चलते हैं। वैसे गोप का एक गो का अर्थ है रक्षक, गोपायते का मतलब रक्षक। ग्वाल बाल जो भगवान की चारों ओर उनके रक्षक के घेरा बना के चलते हैं, अनुवनम, वो एक से दूसरे वन में आते जाते रहते हैं, उनका वन में विचरण सर्वत्र चलता रहता है। नयोतः, इसका मतलब ऐसा ना हो कि यहां से किसी और वन में चला जाए। एक वन तो अपने गोविंद कुंड के दोनों तरफ सुरभि वन है बहुत, आनियोर के गांव से लेकर और अप्सरा कुंड तक, पुछड़ी के लोटे तक, ये पूरे क्षेत्र को सुरभि वन कहते हैं। यहाँ सुरभि गाय जो है विशेष रूप से भगवान को कहा कि मुझे यही निवास दे दो, जिस गाय ने भगवान का अभिषेक किया था। तो ये सुंदर जो वन है, यहाँ किसी एक वन से दूसरे उपवन में भगवान चले जाएंगे। भगवान बड़े उदार हैं। वेणु स्वनहि, और वेणु का वादन करते हुए कलपदई, कलपदई के दो अर्थ हैं। एक तो वेणु में नाना प्रकार के स्वर फूंकेंगे, अथवा धीमे धीमे कदमों से एक वन से दूसरे वन में चले जाएंगे। तनो भ्रष्टो, जिनको जो भी शरीरधारी हैं, जिनको भगवान ने शरीर दिया है, वो सखियो देखो तो सही, सख्य असपंदन। आश्चर्य तो ये है, जो चर हैं वो अचर बन जाते हैं, जो अचर हैं वो चलने लगते हैं, झूमने लगते हैं। ये कृष्ण की वेणु का प्रभाव है। क्या कह रही हैं? असपंदना, स्पंदना का मतलब उनका हिलना बंद हो जाता है, गति मताम, जो हल चल सकते हैं उनका चलना बंद हो जाता है, पुल कही तरुणा, और जो वृक्ष हैं वो पुलकित होके हिलने लगते हैं, लगता है कि चलने शुरू हो जाएंगे, अचर अचर हो जाता है और चर अचर हो जाता है, ये कृष्ण की वेणु का प्रभाव है। नदियां चलने वाली रुक जाती हैं, पेड़ एक जगह होने वाले आनंद में नृत्य करने लगते हैं। निर्योग पास का एक तो सामान्य अर्थ है वो रस्सी जो गाय के पीछे के पांव दोहने के सामने बांधने वाली है, अथवा ऐसी बहुत सुंदर रस्सी जिससे गाय के बछड़े को दोहने के समय थोड़ा दूर उस रस्सी से बांध के रखा जाता है, उसको निर्योग कहते हैं। उकृत लक्ष्यो हो, ये दोनों भाई उसको अपने सर के ऊपर धारण कर लेते हैं, विचित्रम बड़े अद्भुत लगते हैं। हे सखियो कृष्ण और बलराम, जब एक वन से दूसरे वन में अपने सखाओं के साथ गायों को लेकर भ्रमण करते समय गायों के पांव को पीछे वाले पांव को बांधने वाली रस्सी को अपने सर के ऊपर धारण करते हैं, कभी कभी कंधे के ऊपर रखते हैं, और जब वेणु का वादन शुरू करते हैं तो उनके स्वर को सुनकर चलने वाले जीव अचल हो जाते हैं, स्तब्ध हो जाते हैं, और अचल वृक्ष जो है वो आनंद में झूमने लगते हैं। ये सब आश्चर्य है, अद्भुत है। प्रभुपाद के शिष्य लिखते हैं वो जो गाय के बांधने वाली रस्सियां हैं कृष्ण बलराम कभी कभी उनका अपने सर के ऊपर धारण करते हैं, कभी कभी अपने कंधों के ऊपर रख लेते हैं, और वो रस्सियां भी सामान्य नहीं है, पीले रंग की रस्सियां होती हैं और कोने में हीरे, दोनों छोर में हीरे मोती जड़े हुए होते हैं, बड़ी सुंदर होती है। और ये ग्वाल बालों के लकुटी के साथ, बांसुरी के साथ, और जो वो सींग बजाने वाला उठाते हैं, इनके साथ एक और भी उनका आभूषण है ग्वाल बाल का, गायों को बांधने वाली रस्सी। वो कैसी है चक्रवर्ती पाद देखते हैं, ये पीले कपड़े की होती हैं, नरम होती हैं, उसके कोनों में हीरे मोती लगे होते हैं, अपनी पगड़ी के ऊपर कभी रख देते हैं, और बहुत सुंदर लगते हैं। चक्रवर्ती पाद लिखते हैं, देर मत करो, जल्दी चलो, मानसी गंगा में नहा लो, हरिदेव से प्रार्थना करके कृष्ण के मिलने की इच्छा पूरी करने का भाव प्रकट करते हुए, ऐसा न हो कि बांसुरी बजाते हुए एक वन से दूसरी वन में गायों को लेने चले जाएं। इस भाव से गोपी ये श्लोक कह रही है। गोपी का, ये गोपी का लिखा है, गोप जो भगवान की सेवा का भाव है, इसका मतलब है जो ग्वाल बाल है वो भगवान को गोपयंते, भगवान के रक्षा करते हैं, क्योंकि कृष्ण से प्रेम करते हैं, सदा ही कृष्ण के चारों ओर घेरा बना के चलते हैं। और दूसरा इसका अर्थ है वो प्रतिदिन कृष्ण के संग जाते हैं, और इसीलिए यशोदा मैया ने विशेष कुछ ग्वालों को कृष्ण के रक्षा के लिए साथ भेज दिए। और जब कृष्ण वेणु वादन करते हुए वनों में विचरण करते हैं गायों को चराते हुए, तो इतना अद्भुत वहां का दृश्य हो जाता है, क्या है आश्चर्य, क्या आश्चर्य होते हैं? आश्चर्य ये होता है कि चलने वाले रुक जाते हैं और न चलने वाले चलना शुरू कर देते हैं, और निर्योग का आपको अर्थ बताया, एक रस्सी होती है जिससे गाय के पीछे वाले टांगों को बांधते हैं, अथवा बछड़े को दूर बांध के रखते हैं दोहने के समय। उनके दो छोर में हीरे माणक मोती जड़े हुए होते हैं, क्योंकि ये जो वैश्य हैं जिनके पास गाय है वो बड़े धनी होते हैं, जितना उदारता से वो दान करते हैं, दूध दही मक्खन का, सोना चांदी का, गायों का, ये तो हम बहुत जगहों पे भागवत में पढ़ते हैं। श्री जीव गोस्वामी लिखते हैं, क्या महिमा गाएं गोवर्धन की, वो तो सर्वश्रेष्ठ भगवान का भक्त है ही। ये चर अचर भी ब्रज के वनों में जो भी हैं चर और अचर जीव, वो भी धन्य है। गाय अधिक है, भगवान एक वन से दूसरे वन में विचरण करते हैं, और गोपियां अपने आप को भगवान को न पाने के कारण दुर्भाग्य वाली समझ रही हैं कि हमसे धोखा हो गया। का शब्द जो गोपी कही में है, इसका मतलब ग्वाल बालों के ऊपर तो कृपा कर ली भगवान ने, क्योंकि वो कृष्ण के परिकर हो गए, वो भगवान कृष्ण के रक्षक हो गए, मैया ने उनको खड़ा कर दिया। जहां भय हो या जहां चिंता हो, परंतु हम गोपी हैं, हम गोपियां हैं, हम ऐसी सेवा नहीं कर सकती हैं, ऐसा हमारा सौभाग्य नहीं है। परंतु ये बांसुरी बड़ी उदार है, सबको आनंद देती है। ये बांसुरी की ध्वनि विशेष है, इसके अंदर से कल पदई जो बड़ा मधुर मधुर स्वर निकलते हैं, ये सबको अपनी मधुरता से आकर्षित कर देता है। इसके अंदर से कोई विशेष संदेश कृष्ण गोपियों को भी भेजते हैं और गायों को भी भेजते हैं। और पदई का एक अर्थ है कि बांसुरी के साथ भगवान के चरण के निपुरों का उनके चलते समय जो ध्वनि मिल जाती है, वो तो और सुंदर एक साज बना, एक एक सुंदर और ध्वनि जुड़ जाती है। इसका अर्थ है कि गोपियां भगवान के लीलाओं का सुमरण कर रही हैं और बहुवचन भगवान के लिए आदर के लिए कर रहे हैं। तनुभृत का मतलब जो शरीरधारी है, वो इस वेणु वादन से भगवान के बस में आ जाते हैं, भगवान के प्रेम की रस्सी से बंध जाते हैं, अचल चल बन जाते हैं, चल अचल बन जाते हैं, पूरा प्रकृति का नेम बदल जाता है इस वेणु के वादन से। हमारा क्या कहोगे, हम कितनी दूर तक इस वन में आई हैं, गोपियां कह रही हैं। ये वृक्ष वृक्ष देखो, ये भी रोमांचित हो रहे हैं, इसके नए नए पल्लव निकल रहे हैं, नए नए पत्ते और टहनियां निकल रही हैं। ये तो कंप हो रहा है, लगता है आनंद में विभोर हो गई है। गाय तो बहुत ही निम्र स्वभाव वाली है, उनको बांधने की जरूरत नहीं है। ये रस्सी के लिए जीव गोस्वामी लिखते हैं, रस्सी को निर्योग क्यों कहते हैं, वो गाय के पिछले पांव बांध के दोहने के समय बांधते हैं, इसलिए उसको निर्योग कहते हैं। हरे कृष्णा, एक ही है कि ना पूछा, ये थे पे प्रतिफल पे दोनों भाई वो रस्सियों को जब धारण करते हैं तो बड़े सुंदर लगते हैं, कृत लक्षणा हो, बड़े सुंदर लगते हैं। उन रस्सियों में भी फूल की झड़ियां लगी हुई हैं और सुंदर मोती प्रोए हुए हैं, ये गोप वेश को बड़ा सुंदर बनाती हैं और नवयुवत गोपियों को तो बहुत आकर्षक लगता है। और हर एक अपनी जाति का और आयु के अनुसार उनकी अपनी सुंदरता उनके अपने वेश में लगती है। गोपियों को गोप वेश से सबसे प्रेम लगता है और यही भगवान का आदि वेश है। ये गोपियां कहती हैं विचित्र है, ये श्लोक से गोपियां पूर्ण रूप से कृष्ण में तन्मय है। लगता है कि ये हमसे छल कर रहा है, ये जो रसी है ये तो छल वालों को चाहिए ही चाहिए किसी को बांधने के लिए। इन दोनों के पास रसी है और दूसरे इनके सहायक हैं और जो चीजें चुराते हैं उनको ये संभाल के रखते हैं। उदार हैं वेणु वादन में, वेणु में कोई एक जादू का मंत्र है जो सबको मिसमेराइज कर लेता है, सबको अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। तो सनातन गोस्वामी पाद भी कुछ लिखते हैं इसके लिए। परंतु मोर और लेस सेम है और अंतिम श्लोक है, एवं विदा भगवतो वृंदावन चारिणः वर्णयन्तो मिथो गोप्यः क्रीडास्तनमयताम् द्वयोः। भगवान की लीला में तन्मय होगी गोपियां, इस प्रकार से भगवान के लीला का वर्णन करती हुई एक दूसरे से भगवान की लीलाओं का वर्णन करती हुई, जब भगवान वनों में विचरण करते हुए बंसी वादन करते हैं, गोपियां तन्मय हो गई भगवान के विचार में। प्रभुपाद जी लिखते हैं, कृष्ण प्रभुपाद के शिष्य लिखते हैं, प्रभुपाद ने ये लिखा है अपनी तरफ से कि कृष्ण भावना की ये सिद्धि है कि सर्वत्र भगवान के लीला के ध्यान में निमग्न रहे। और गोपियों का ये भाव है जिसको भगवान चैतन्य महाप्रभु में सर्वश्रेष्ठ भगवान की भक्ति के भाव को कहा है। गोपियां कोई बड़ी ब्राह्मण कुल या क्षत्रिय कुल में जन्म नहीं लिया है और न ही कोई बड़े वैश्य कुल में है, ये तो बेचारी ग्वालनी है, गैया चराने वाली हैं। इन्होंने सुना है ब्राह्मणों से वेदों का वर्णन। गोपियों का उद्देश्य केवल एक है कि सदा कृष्ण के ही ध्यान में मगन रहना। और ऐसे वो कृष्ण के निकट पहुंच गए, चक्रवर्ती पाद कहते हैं, और उनका मिलन हो गया। क्योंकि भागवत में अन्य स्थानों में गोपियां कहेंगी कि आप हे कमल नैन, हमने आपके चरणों का स्पर्श किया है, तो इसका मतलब इनका मिलन होता है, पहली बार मिलन होता है वेणु गीत के समय और फिर रास लीला के समय मिलन होगा। ये गोपियां प्रायः वो हैं जो कात्यायनी का व्रत करके भगवान को पति के रूप में प्राप्त करना चाहती थी। तो यहाँ हम आज की कथा को विराम देते हैं। वृंदावन विहारिण, वृंदावन विहारी भगवान के चिंतन में निगमन मग्न रहती हैं गोपियां। यह हमारा आज का ये वेणु गीत समाप्त हुआ है। तो बड़ा भाव विभोर हम समय और अन्य कारणों के कारण इसका इतना रसास्वादन नहीं कर सके। आगे कृष्ण की कभी कृपा होगी तो इसका रसास्वादन करेंगे। हरे कृष्ण। और कोई प्रश्न जिज्ञासा है? बहुत लोग आप हैं, 33 लोग आज। धन्यवाद आप सबका।
हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा।
हरे कृष्णा
प्रभु जी। जैसे आपने बताया ना, चल अचल हो जाते हैं, अचल जो है वो चल हो जाते हैं। ये बिल्कुल हम ये महसूस कर रहे थे कि